الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں پچھلے کافی دنوں سے ایک آیت کریمہ کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور اس کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ آج ہم سارے مسلمان، خواہ وہ کسی بھی خطۂ زمین میں آباد ہوں، مشکلات کا شکار ہے اور دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور بالخصوص ہمارے ملک میں جو سیاسی اقتصادی بحران آیا ہوا ہے، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. اور یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. رشوت خوری ہے، حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے، ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت بٹورنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ملک و قوم کے مفاد سے ایسا لگتا ہے کہ قطع نظر کی ہوئی ہے. اس جیسے موقع پر، جبکہ کوئی شخص کسی ایسے منصب یا ایسے مقام پر ہو جہاں وہ کچھ حالات کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کا تو فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقدور کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک، اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو ان حالات کی اصلاح کے لیے استعمال کرے. لیکن وہ اب عام لوگ جن کے ہاتھ میں نہ اقتدار ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکیں، ان کے لیے راہ عمل کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے اس جیسے موقع کے لیے ایک ہدایت عطا فرمائی ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی. وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر مجلسوں میں تبصرے کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور ان قیاس آرائیوں کی بنیاد پر افواہیں پھیلتی ہیں، اور ان افواہوں نے وہ افواہیں حالات کی اصلاح کرنے کے بجائے جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیتی ہیں. ان افواہوں کے نتیجے میں جو افتراق و انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس افتراق و انتشار میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور نفرتیں اور بڑھتی ہیں. قوم اور ملک اور ملت पहले से ज्यादा टुकड़ों में बंटती है और फायदा उसका कुछ भी नहीं। अगर बैठकर तबसरे करते रहें, मजलिसें अपने तबसरों से आबाद करते रहें, तो उसका कोई फायदा हालात की तब्दीली पर नहीं पड़ता। लिहाजा ऐसे मौके पर दो चीजें हैं जिनकी तरफ कुरान और सुन्नत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। सबसे पहले तो यह हुक्म दिया है एक हदीस में रसूल करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर तुम्हारे हुक्मरान और तुम्हारे अस्हाब इख्तदार वो अगर कोई फसाद फैला रहे हैं या गलत रवि का शिकार हैं या जुल्म व सितम कर रहे हैं, तो रसूल करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारा काम सबसे पहले यह है कि अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, उससे मांगो कि हम इस मुसीबत के शिकार हैं, उस मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह कोई हमारे पास कोई वसीला नहीं है सिवाय आपकी जात के, कि आप अपने फजल व करम से हमें ऐसे आदिल और मुनसिफ हुक्मरान अता फरमा दीजिए और हमारे हालात को आप दुरुस्त फरमा दीजिए। यह दुआ करने की तलकीन नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये किसके लिए? उस शख्स के लिए जिसके हाथ में कोई इख्तदार नहीं, जिसके पास कोई इस्तात नहीं कि वो हालात को तब्दील कर सके, जैसे हम लोग आम लोग। अब ये बताइए कि अगर बैठकर तबसरे करते रहें और उससे अपनी मजलिसें आबाद करें, उसमें किसी की रीबत होगी, किसी पर बोहतान लगेगा, किसी की बेइज्जती होगी, किसी को बुरा भला कहा जाएगा, नतीजा ये कि बजाय इसके कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते, हमने अपने सर और गुनाह लाद लिए। न जाने कितनी गीबतें हैं, न जाने कितने बोहतान हैं, न जाने कितने लोगों की हद के इज्जत है, उसमें मुबतला हो रहे हैं। तो यह गुनाह पर और गुनाहों का इजाफा हो रहा है, खराबी पर और खराबी बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर यही वक्त जो हम इस बेकार मशगले में इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकार नहीं मुजिर मशगले में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका आधा वक्त भी हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू में खर्च कर दें, तो ये बताइए सारी कौम सारी उम्मत अगर दुआओं पर लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला से मांगने पर लग जाए, हालात को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह जल्ला जलालहू की कुदरत का वास्ता दे, उसकी रहमत का वास्ता दे, और कुदरत और रहमत का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांगे कि या अल्लाह ये सारे हालात जिन्होंने हमें तबाही के किनारे पर पहुंचाया हुआ है, हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपका दर खटखटा सकते हैं, आपका दरवाजा खटखटा सकते हैं, कुदरत आपकी है, रहमत आपकी है, मालिकुल मुल्क आप हैं, तो इज्जु मन तशा व तुजुल्लु मन तशा करने वाले आप हैं, बियदिकल खैर और खैर जो कुछ है वो आपके कब्जे कुदरत में है, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, आप हर चीज पर कादिर हैं। अगर पूरी कौम वो इन फजूल मजलिसों से के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का एहतमाम कर ले, तो मुझे अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल व करम से यकीन है कि इंशाल्लाह ये हालात बदल जाएंगे। देखो ग़ज़वे बद्र के मौके पर नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 अफराद थे जिनके पास 8 तलवारें थीं और 2 घोड़े थे, 8 तलवारें 2 घोड़े बाग के पास, फिर और कुछ नहीं तो उन्होंने लाठी उठाई हुई थी, किसी ने पत्थर उठाया हुआ था, और मुकाबला था 1000 मुसल्ला सूरमाओं का। तो रात के वक्त में नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए एक छप्पर बनाया गया था मैदान बद्र के अंदर, उस छप्पर में आप ने रात के वक्त में और काम बाद में किए कि फौज की किस तरह सफबंदी होगी, कौन कहां खड़ा होगा और किसका क्या काम होगा, ये तकसीम कार आपने बाद में फरमाई, लेकिन उस छप्पर में सजदे में गिरकर अल्लाह जल्ला जलालू से रुजू किया और फरमाया कि अल्लाह ये निहत्ते लोग आ गए, इनके ऊपर इतने बड़े लश्कर ने हमला कर दिया है, सिर्फ आप ही की कुदरत है जो इसको बचा सकती है और जो इनको पता दिला सकती है, और आज अगर ये छोटी सी जमात हलाक हो गई, इंतहलिक हाजिल इसाबा लम तुबद बाद, तो फिर आपकी इबादत करने वाला दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। ये गिड़गिड़ाकर रोकर अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करके आपने दुआ मांगी, तो दुनिया ने देखा कि वो गज़वे बदर का मैदान यौमुल फुरकान बन गया, हक व बातिल को उसने इस तरह जुदा कर दिया कि जो बड़े जबरदस्त सूरमा और बड़े मुसल्ला और बहादुर कहलाने वाले लोग थे वो चारों खाने चित हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके 70 बड़े सरदार मारे गए और 70 कैद हुए और बाकी लश्कर भाग गया। ये किस चीज ने किया? ये अल्लाह ताला से रुजू ने किया, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगने ने किया। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी तरफ रुजू करने वाले बंदों की मदद करता है, जो उसको बिल्कुल खातिर ही में ना लाएं, उसकी तरफ रुजू ही ना करें, उससे मांगे ही नहीं और अपने अपने खुद साख्ता कामों में मशगूल रहें, तो उनकी मदद कैसे हो, उनकी नुसरत कैसे हो। आज हमारी मजलिसें गीबतों से भरी हुई हैं, हमारी मजलिसें बहतानों से भरी हुई हैं, हमारी मजलिसें अफवाह साजियों से भरी हुई हैं। अफवाह फैलाना, खुद कुरान करीम ने इसको बड़ा जुर्म करार दिया, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कफा बिल मरए कज़िबन अन तुहद्दिसा बिकुल्ली मा समिअ, कफा बिल मरए कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिअ, इंसान के झूठा होने के लिए इतनी बात भी काफी है कि जो बात भी उनके कान में पड़ी तहकीक के बगैर उसको आगे चलता कर दिया। कोई इंसान जिसको कोई किसी वाकये का पता चले, किसी के ने कोई बात उड़ा दी, किसी के कान में पड़ गई, तो उसके लिए जायज नहीं है उसको आगे फैलाना जब तक के उसकी तस्दीक और तहकीक न कर ले। अगर उसके बगैर फैलाएगा तो उसके नतीजे में वो झूठ का गुनहगार होगा, वो झूठा होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफी है कि जो कुछ उसने सुना उसको आगे फैला दिया बगैर उसकी तहकीक किए हुए। और एक हदीस में एक बड़ी ही नफ्सियाती बात भी फरमाई गई है कि बाज़ औक़ात इंसान को भाई कोई खबर मिली तो उसने उसकी तहकीक तो की नहीं, और जब उसको आगे फैलाता है तो कहता है कि भाई मुझे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी मुबहम लोगों पर डाल देता है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद एक रिवायत में मरबी है कि आपने फरमाया बीसा मतियतुल कज़ीब यकूल उन्नास, कि झूठ की बदतरीन सवारी यह है कि आदमी यह कहे कि लोग कहते हैं, झूठ की बदतरीन सवारी यह है कि वो ये कहे कि लोग कहते हैं, यानी वो चाहता तो है ये बात फैले, दूसरे तक पहुंचे, लेकिन इतनी उसकी इतनी उसको दिमाग में कुछ अकल है थोड़ी सी कि इसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर न लूं, तो अपनी जिम्मेदारी वो लोगों पर डालकर कह देता है कि लोग कहते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया है उसके अंदर आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो खबरें इस तरह फैलाते हैं, लंबी चौड़ी इतना लिख देते हैं एज रिसीव्ड, एज रिसीव्ड, यानी जो मुझे जिस तरह पहुंचा है मैंने उसको फैला दिया, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। तो इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। सरकारें तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि झूठ की बदतरीन सवारी यह है कि आदमी ये कहे कि लोग कहते हैं। अब आप देखिए कि कितना झूठ फैल रहा है, और वो लोग जो अपने आप को झूठा करार देने से शर्माते हैं या झूठा करार देने से उनको ये ख्याल होता है कि मैं कहीं झूठा करार पा जाऊं, तो वो भी ये कहकर के लोग कहते हैं, ये कहकर वो भी झूठ में मुबतला हैं। और उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि झूठ की बदतरीन सवारी है ये। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने लोग हैं कि जो हालात की इस खराबी को देखते हुए वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, यानी थोड़ा सा वक्त इस काम के लिए निकालते हैं कि खाली तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से रुजू करें और उससे कहें कि या अल्लाह हम इन मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए हैं, इन बुहरानों ने हमें घेर लिया है, ये हम सियासी तौर पर तकसीम हो गए हैं, सियासी तौर पर हमारे दरमियान अदावतें पैदा हो गई हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन वो अदावत में इस वक्त मुखालफत नहीं अदावत में मुबतला है। या अल्लाह इस और हमारी हालत इक्तिसादी हालत तबाह हो गई है, ऐ अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं है जो इन हालात को दुरुस्त कर सके, तो आप अपने फजल व करम से हमें इन बहरानों से निजात अता फरमा दी। ये इस तरफ मुतवज्जे होने वाला, ठीक है हर नमाज के बाद हमने हाथ उठा के चंद जुमले कह लिए, हाथ उठाकर चंद जुमले कह लिए, आदत पड़ी हुई है कि नमाज के बाद हाथ उठाकर कुछ दुआ मांगा करते हैं, चलो ये भी मांग ली, लेकिन इस काम के लिए क्या ये नहीं कर सकते कि जितना वक्त हम मजलिसों में तबसरों में गुजारते हैं दो रकतें नमाज हाजत रोजाना पढ़ लिया करें। नमाज हाजत सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बंदे को कोई हाजत दरपेश हो, कोई जरूरत दरपेश हो, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है, लोग वजीफे तो बहुत कर वजीफों पर बहुत ताबीज गंडों पर बहुत यकीन करते हैं, लेकिन नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, आज हर शख्स हमसे ये पूछता है कि भाई फला काम के लिए हम कौन सी दुआ पढ़ें, फला काम के लिए हम क्या वजीफा इख्तियार करें, फला काम के लिए ताबीज दे दीजिए, फला काम के लिए गंडा दे दीजिए, और जब हम उनसे कहते हैं भाई हमें ताबीज गंडे नहीं आते, हमें वजीफे नहीं आते, तो वे समझते हैं ये बेकार, इन्होंने इतना बड़ा मदरसा कायम कर रखा है, ये जो है इसमें अगर ताबीज गंडे नहीं सिखाए जाते और अमलियात नहीं बताए जाते तो ये कारखाना बेकार काम कर रखा है इन लोगों ने, उनको ये पता ही नहीं कि यहां क्या होता है और क्या पढ़ाया जाता है, लेकिन लोग इस पर फरेफ्ता है। लेकिन जो चीज रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई कि जब तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो, कोई जरूरत पेश आए, तो फिर खड़े हो जाओ अल्लाह के दरबारगाह में तन्हाई में, दो रकतें पढ़ो जिसको सलातुल हाजा कहते हैं, और दो रकतें पढ़कर कहो ला इलाहा इल्लल्लाहुल अहियुल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ये जुमला कह लो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, उसके बाद एक और दुआ भी है, اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وظائف مغفرتك من جهات أمرك والسلامة من كل إثم غريمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ये अपनी जगह, चलो वो न अगर याद नहीं है तो न सही, लेकिन لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ये कहकर अपनी हाजत अपने परवरदिगार की बारगाह में पेश कर दो. ये तरीका खुद रसूल करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर हाजत के लिए, चाहे वो इनफिरादी हाजत हो और चाहे इज्तिमाई हाजत हो. यह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है. अब आप देख लो कि हम 25 करोड़ की आबादी है हमारी, और रोज हम या तो खुद मुबतला हैं लड़ाई झगड़ों में, या उस पर तबसरों में, या एक को गाली देने में और दूसरे को आसमान पर चढ़ाने में, जिसको जो हमारा मुआफिक है, जिसकी तरफ हमारा रुझान है, वो आसमान पर चढ़ा दिया उसको, और जिससे हमें दुश्मनी है उसको असफल उस्साफिलीन में गिरा दिया. रोज ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि इस 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी में कितने हैं जिन्होंने नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से मांगा हो. अगर मैं यकीन से कहता हूं अल्लाह ताला के भरोसे पर कि अगर कौम इस तरह मुतवज्जे हो जाए कि रोज नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह तबारक ताला से मांगे कि या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल ली, तो मुझे अल्लाह के जात पर पूरा भरोसा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारे सर से ये बोहरान टल जाएंगे, हमारी कौम इंशाअल्लाह फलाह याफ्ता हो जाएगी. तो एक बात तो ये थी, जब इस किस्म के हालात पेश आए तो क्या तालीम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. पहली तालीम यह है कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, रुजू इल्लाह. और रुजू इल्लाह किस तरह, उसका तरीका भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, नमाज हाजत. एक बात तो यह. दूसरी बात जो कुरान करीम ने बताई और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो उस आयत में है जो मैं काफी दिनों से जिसके ऊपर बातें कर रहा हूं, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, بڑے پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو. یہ اللہ تعالیٰ اپنا جو رشتہ ہے بندوں کے ساتھ اس رشتے کا حوالہ دے کر یہ خطاب فرماتے ہیں. جیسے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اس کا نام لے کر پکارا جائے, اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارا جائے. تو بیٹا کہہ کر جب پکارتے ہیں تو اس میں پیار زیادہ ہے, اس میں شفقت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ نام لے کر پکارا جائے. اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو پکارتے ہیں تو نام لے کر نہیں بلکہ اس رشتے کا حوالہ دے کر پکارتے ہیں جو رشتہ مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے, یعنی ایمان کا رشتہ. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تم اپنی خبر لو, لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے, علیکم انفسکم, تم اپنی خبر لو, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں یا گمراہ ہو رہے ہیں, اگر تم صحیح راستے پر ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ اللہ مرجعکم, سب لوگوں کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے, تو اس وقت وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کام کیا کرتے تھے. ربکم ما کنتم تعملون, کیا فرمایا کہ بھائی ایسے مواقع پر دوسروں پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے. ہر وقت ہماری مجلسیں इससे आबाद रहती हैं कि भाई रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो गया, हलाल हराम की फिक्र मिट गई, लोग दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, वहां पर उनको उनका काम नहीं होता बगैर रिश्वत के, अदालतों में जाते हैं तो चक्कर लगाते रहते हैं और हमारा मुकदमे का फैसला ही नहीं होता, और जज भी ऐसे हो गए और वकील भी ऐसे हो गए और डॉक्टर भी ऐसे हो गए और उलमा भी ऐसे हो गए। ये सारे के सारे तबसरे हम दिन रात दूसरों के ऊपर करते हैं कि वो ये खराब हो गए, और कभी ये नहीं सोचते कि मैं भी तो आखिर, मुझ पर भी तो कुछ फराइज हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का बंदा होने के हैसियत से मुझ पर भी कुछ फराइज आए हैं, मैं किस हद तक उन फराइज को अदा कर रहा हूं। अपने गरीबान में मुंह डालने की और अपने आमाल को देखने की जो सलाहियत है वो हम खो चुके हैं। हर शख्स दूसरे के इस्लाह में पड़ा हुआ है, वो ठीक हो जाना चाहिए। यहां तक कि जो तहरीकें इस्लाह की या दावत की खड़ी होती हैं वो भी दूसरों से कहती है भाई तुम ठीक हो जाओ, लेकिन जो खुद दाई खड़ा हुआ है तो वो कभी ये सोचे कि खुद मैं भी तो इस्लाह का मोहताज हूं, मैं भी तो, मेरे अंदर भी तो अयूब हो सकते हैं, मेरे अंदर भी तो खराबियां हो सकती हैं, तो उन खराबियों के इलाज की तरफ तवज्जो नहीं होती। अपने आप को, हम तो भाई कामिल मुकम्मल हो चुके, हम तो पूरी तरह अमानतदार भी हैं, दयानतदार भी हैं और अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, हमें किसी मजीद इस्लाह की जरूरत नहीं है। जो कुछ इस्लाह की जरूरत है दूसरों को है। कुरान ये कहता है कि यही सबसे बड़ा फसाद है कि हर आदमी अपने आप को पुअत्तर समझता है, हर आदमी अपने आप को यह समझता है कि मुझे इस्लाह की जरूरत नहीं। तो ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपनी खबर लो, सबसे पहले दूसरों का जायजा लेने के बजाय अपना जायजा लो कि मैं कितने पानी में हूं। यानी जायजा कैसे लो कि अगर मुसलमान होने का के दावेदार हो तो अल्लाह ताला ने इस्लाम में हमें 5 किस्म के अहकाम दिए हैं, 5 शोबों में हमें इस्लाम की पैरवी करनी है, एक अकायद, एक इबादात, एक मामलात, एक मुआशरत, एक अखलाक, ये 5 शोबे हैं। दीन इन 5 शोबों के मजमुए का नाम है, और इबादात भी दुरुस्त हों, अकायद भी दुरुस्त हों, मामलात लोगों के साथ तो लेन देन के मामलात होते हैं वो दुरुस्त हों, मुआशरत यानी आपस में रहने सहने के जो तरीके हैं वो दुरुस्त हों, अखलाक दुरुस्त हों, तो मोमिन बनता है पक्का। इन 5 मेयारों के लिहाज से हर इंसान अपना जायजा ले, मेरा अकीदा दुरुस्त है कि नहीं, मैंने तौहीद का कलिमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो क्या मैं किसी अल्लाह के सिवा किसी और को कहीं मैं अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा वगैरह तो नहीं करार देता। इबादात के अंदर जायजा लेने की जरूरत है, नमाज में किस तरह पढ़ता हूं, नमाज के अंदर नमाज का हुक्म कहीं नहीं दिया अल्लाह ताला ने, हुक्म दिया है इकामतुस्सला, अकीमुस्सला, नमाज कायम करने का, नमाज कायम करने के माना है मस्जिद में आकर जमात से नमाज पढ़ो। पिछले जुमा को मैंने अर्ज किया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग नमाज बाजमात में हाजिर नहीं होते मेरा दिल चाहता है उनके घरों को जाकर जला दूं, ये इकामत सलात है। फिर जो है उस नमाज को नमाज के तरीके से खुशू के साथ अदा करना, कद अफलहल मुमिनून लदीन हुम फी सलातिहिम खाशियून, कि नमाज खुशू के साथ अदा की जाए। अब चूंकि वक्त खत्म हो गया लिहाजा मैं इस मजीद तफसील में इस वक्त जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी दी तो अगले जुमा में यह अर्ज करूंगा कि यह खुशू का क्या मतलब है और खुशू किस तरह हासिल होता है और किस हद तक इंसान इसका मुकल्लब है। तो ये सब बातें सोचने की हैं। हम हर शख्स अगर अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए इन 5 शोबों के अंदर माशरा दुरुस्त हो जाएगा। एक आदमी भी दुरुस्त हो गया, एक चिराग जल गया, वो एक चराग से चराग जलता है, फिर इस तरह रफ्ता रफ्ता सारा मुआशरा दुरुस्त हो जाता है। ये तरीका बताया है अल्लाह ताला ने हमारी इस्लाह का। अल्लाह ताला हमें अपने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। www.thisquran.com